दिन भर तारीख 13 जनवरी दिन रविवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस।
हम सब ने ये चैलेंज कबूल किया है, मजबूती से हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे।
सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस के मैदान में होने से भाजपा को क्या होगा नफा नुकसान?
अब किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर क्लियर मेजोरिटी में नहीं होगी, यह इस गठबंधन का निहितार्थ है।
सुनवाएंगे अभिनेता अनुपम खेर से खास बातचीत।
सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप दुनिया को बता सकते हैं ये मेरे विचार हैं, और जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए तो मैं चुपके नहीं करूंगा, मैं वो भी डंके की चोट पे करूं।
लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। कांग्रेस ने आज लखनऊ में कहा कि वो उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले कल सपा और बसपा ने गठबंधन का ऐलान करते हुए 38-38 सीटों पर लड़ने की घोषणा की थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शनिवार को हुए शक्तिशाली धमाके में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। इस धमाके में अग्निशमन विभाग के 2 कर्मचारी और स्पेन के एक पर्यटक की मौत हो गई थी। अब लापता चल रही एक महिला का शव बरामद हुआ है। यह धमाका पर्यटकों की एक पसंदीदा जगह में बेकरी में गैस लीक होने के कारण हुआ था। इस धमाके में दर्जनों लोग जख्मी हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से अपील की है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ पूर्व पुलिसकर्मी को फांसी न दे। खिजार हयात को 2003 में एक सहकर्मी की हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब वो सिजोफ्रेनिया और साइकोसिस से जूझ रहे हैं। हयात को मंगलवार को फांसी दी जानी है, लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अब सोमवार को उनकी मां की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई होगी। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने खाड़ी में अमरीकी सहयोगी देशों से अपील की है कि वो अपने कूटनीतिक विवादों को सुलझा लें। इस क्षेत्र की यात्रा पर आए पोम्पियो ने कहा कि कतर और इसके पड़ोसी देशों जैसे कि सऊदी अरब और यूएई से चल रहा विवाद कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया है।
Today in our conversations I stressed the importance of unity among the Gulf Cooperation Council members.
आज हमने बातचीत की तो मैंने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्यों के बीच एकता लाने के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप और मैं मानते हैं कि यहां चल रहा विवाद कुछ लंबा ही खींच गया है। इससे सभी को नुकसान हो रहा है। हमारे देश महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और ये काम जारी रहना चाहिए। अमरीका को उम्मीद है कि सभी पक्ष अपना सहयोग बढ़ाएंगे और एकता बनाए रखेंगे। ये थे अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने चेताया है कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से निकालने में नाकाम रहना लोकतंत्र में अक्षम्य अपराध होगा। संसद में होने वाले अहम मतदान से 2 दिन पहले मे ने कहा कि सांसदों को यूरोपीय संघ से निकलने के समझौते को खारिज करके लोगों को निराश नहीं करना चाहिए। माना जा रहा है कि सांसद इस सौदे को खारिज कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो सरकार को डर है कि वो संसदीय कार्यों पर से नियंत्रण खो देगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि उनके देश ने शुक्रवार रात दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए थे। उन्होंने कहा कि यहां पर एक डिपो में ईरान के हथियार रखे गए थे और वहीं पर हमला किया गया। नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग में बताया कि सीरिया में इसराइल ने ईरान और उसके लेबनान के सहयोगी संगठन हिजबुल्ला के ठिकानों पर सैकड़ों हमले किए हैं। हमने सीरिया में ईरान के सैन्य ठिकानों पर सफल हमले किए हैं और इसराइल के रक्षा बलों ने ईरान और हिजबुल्ला के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया है। हमने लेबनान में हथियारों का उत्पादन रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। लेबनान में हिजबुल्ला की सुरंगों को नष्ट किया है और गजा की सीमा पर हमास की सुरंगों को भी नष्ट किया है। हमने अन्य जगहों पर भी कभी खुलकर तो कभी चुपके से सैकड़ों चरमपंथी घटनाओं को रोका है। ये थे इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश के कपड़ा उत्पादकों के संघ के प्रमुख ने धमकी दी है कि अगर हड़ताल पर गए मजदूर सोमवार तक काम पर नहीं लौटे तो वो अनिश्चितकाल के लिए फैक्ट्रियों को बंद कर देंगे। एसोसिएशन के प्रमुख सिद्दीकुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये धमकी दी। इस मामले में विवाद सुलझाने के लिए सरकार द्वारा मध्यस्थता के लिए नियुक्त एक पैनल कल बैठक करेगा। एक हफ्ता पहले बांग्लादेश में ज्यादा वेतन की मांग करते हुए हड़ताल शुरू की गई थी। मजदूरों का कहना है कि सरकार ने जो वेतन बढ़ाने का वादा किया था उन्हें बढ़ा हुआ वेतन अब नहीं दिया जा रहा। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। कल लखनऊ में सपा बसपा गठबंधन का ऐलान हुआ तो आज लखनऊ में ही कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से इस गठबंधन को संदेश देते हुए ये ऐलान कर दिया कि वो अकेले उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने इसकी घोषणा की। सुनिए लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की घोषणा के बाद ये तय हो गया था कि कांग्रेस पार्टी यूपी में या तो अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर कुछ अन्य छोटे दलों को लेकर। लेकिन रविवार को दिल्ली से लखनऊ पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की टीम ने यह साफ कर दिया कि वो सभी 80 लोकसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने बताया,
राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनको कोई हराने वाली पार्टी है तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वो लड़ाई लड़ेगी और उन्होंने और हम सब ने ये चैलेंज कबूल किया है। हम उत्तर प्रदेश की भी 80 की 80 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी तैयारी पूरी है। और जिस तरह से हमने एक आश्चर्यजनक रिजल्ट 2009 में पार्लियामेंट में दिए थे लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे पूरा विश्वास है कि उससे तिगनी नहीं तो उससे दुगनी सीटें जिस वक्त उस वक्त मिली थी, हम अकेले अपने दम पर उसी लगन से करेंगे।
गुलाम नबी आजाद के साथ यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर भी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के निशाने पर मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को कमतर आंकने का आरोप लगाया और चेतावनी दे डाली कि चुनाव परिणाम 2009 से भी बेहतर हो सकते हैं। 2009 में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 22 सीटें हासिल हुई थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने शनिवार को 38-38 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और अमेठी रायबरेली की सीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सम्मान में छोड़ दी थी। वहीं बीजेपी ने सपा बसपा गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा,
ये अवसरवादी जातिवादी और भ्रष्ट मानसिकता का गठबंधन है, जो विकास नहीं चाहता, जो सुशासन नहीं चाहता, जो अराजकता, दंगा और अव्यवस्था और अराजकता का कारण है। वही लोग गठबंधन अपने निजी स्वार्थों के लिए चला रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक व्यक्ति, एक परिवार या एक जाति विशेष तक सीमित रख दिया था।
हालांकि अभी ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरह राजनीतिक विश्लेषक भी यही मानते हैं कि सपा और बसपा के गठबंधन को छोड़ना कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद ही साबित होगा, सीटों के लिहाज से भी और उसकी सांगठनिक मजबूती के हिसाब से भी। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
कल तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस किसी न किसी तरह सपा बसपा के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करेगी, लेकिन आज कांग्रेस ने तस्वीर साफ कर दी है। गठबंधन को लेकर क्या दिक्कतें रहीं और अब इससे कांग्रेस या भाजपा को क्या लाभ होगा, यही सब सवाल पूछे मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले योगेश मिश्रा से।
कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन एक ऐसी स्थिति में जब सपा और बसपा ने उसे किनारे कर दिया हो तो वो सीटें छोड़ेगी किस बात के लिए, और 80 सीटों पर लड़ेगी तो कांग्रेस को अगले विधानसभा चुनाव में जो 2022 में होंगे, जो कांग्रेस की आज स्थिति है कि वो 7-8 सीटों पर है, वो पड़ेंगी और कांग्रेस भी लोगों के निगाह में एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में आएगी और नरेंद्र मोदी जी अपने पूरे कैंपेन में सपा और बसपा को नहीं गाली देंगे, नहीं कुछ कहेंगे, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे तो निश्चित तौर से सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ। तो राहुल गांधी यूपी में कैंपेन करेंगे तो उनका वोट परसेंट बढ़ जाएगा, बस इतना कुछ हो सकता है, 1-2-4 सीटें बढ़ जाए, इसके अलावा इनका कोई 80 सीटों पर लड़ने से फायदा नहीं।
गुलाम नबी आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो पहले 25 सीटों पर लड़ते अगर गठबंधन होता, तो इसमें दिलचस्पी किसने नहीं दिखाई?
देखिए, एक तो गुलाम नबी आजाद जी 25 सीटें कह रहे थे, वो गलत है। 25 सीटों की स्ट्रेंथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की है ही नहीं, 25 कैंडिडेट सीरियस नहीं है उसके पास। तो अगर वो डिमांड कर रहे थे तो एक तो गलत डिमांड कर रहे थे, दूसरे मायावती जी नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ वो लड़े और कांग्रेस उनके साथ आए, तो ये मायावती जी का अपना है, ये था राहुल गांधी को साथ लेकर के चलना अखिलेश यादव के लिए नहीं खराब था, क्योंकि अखिलेश यादव अभी एक एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, उस एक्सपेरिमेंट में कांग्रेस का नुकसान हुआ था, अखिलेश यादव का बहुत नुकसान नहीं हुआ था, हालांकि वो भी ऑल टाइम लो चले गए। तो मुझे लगता है कि इसमें मायावती जी की इच्छा नहीं है कांग्रेस के साथ लड़ने की, और वो किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ कोई अलायंस बनाने के मूड में नहीं है प्री इलेक्शन।
तो बीजेपी जो 2014 के चुनावों में यूपी का सबसे बड़ा दल थी, बम्पर जीत हासिल की, उसका कितना नफा नुकसान होगा इससे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यूपी में मोनोपोली थी, और एक तरह से कहिए तो भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें जीत ली थी, सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें थी, 20% वोट पाके मायावती 0 सीटें पाई थी। अब क्या है कि इन गठबंधन ने 2 तरह के क्लेम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। पहला कि पिछली बार टारगेट 73 था, इस बार 74 है, तो इस गठबंधन ने उसके इस टारगेट को पूरा नहीं होगा ये बता दिया है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में गठबंधन से एक और चीज सामने आई है, पिछली बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर क्लियर मेजोरिटी पर थी, 282 उसके पास सीटें थी। अब किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर क्लियर मेजोरिटी में नहीं होगी, यह इस गठबंधन का निहितार्थ है, यह इस गठबंधन का संदेश है।
भाजपा को उत्तर प्रदेश में हो सकता है नुकसान, अधिक जानकारी दे रहे थे योगेश मिश्रा।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
अब रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां कल रामलीला मैदान में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त हुआ। वहीं उसी जगह आज दलित संगठनों की एक रैली आयोजित हुई। इस रैली में पिछले साल 2 अप्रैल को दलित समाज के भारत बंद के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को सम्मानित किया गया। बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र इस रैली में पहुंचे और यहां आए लोगों से तमाम विषयों पर उनकी राय जानी। सुनिए उनकी ये खास रिपोर्ट।
विलादे सिंहासन तू मनुवादी सरकार का, असर होना चाहिए तुझ पे कांशी राम की ललकार का, जो मानवर साहब कांशी राम जी ने ललकारा है।
कांशी राम और भीमराव अंबेडकर की विरासत का जिक्र और जय भीम के नारे। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन के ऐलान के अगले ही दिन नई दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को दलितों की एक रैली हुई। इस रैली का मुख्य मकसद 2 अप्रैल को हुए दलित समुदाय के भारत बंद के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को सम्मानित करना था। बीते साल ये प्रदर्शन SC ST एक्ट में बदलाव के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित संगठनों की ओर से बुलाया गया था, जिसने हिंसक रूप धारण कर लिया था। इसी प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार को SC ST एक्ट को अपने मूल स्वरूप में बहाल करना पड़ा था। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद भी भारत की राजनीति में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिस पर दलित समुदाय की राय और रुझान को लेकर एक उत्सुकता है। इस रैली में आए लोगों से हमने उन मसलों पर भी बात की। इलाहाबाद से आए राहुल कनौजिया BA प्रथम वर्ष के छात्र हैं।
अरे कोई कहने की बात थोड़ी नहीं, अपने बहुजन समाज के लोगों की बात है, इसमें कहे या ना कहे आना है हमें बस।
आपको पता है एक केंद्र सरकार ने एक आरक्षण का नया प्रावधान किया है गरीब सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर।
अरे गरीब तो बहुजन में जो आते हैं, अगर संविधान की बात माने तो बहुजन में जो आते हैं वो गरीब हुए ना, स्वर्ण कैसे गरीब हो गए।
सरकार का ये कहना है हम उनको देंगे जो 8 लाख से कम की आमदनी वाले।
तो वही बता रहे हैं जो 5 लाख कमाता है वो टैक्स देता है, वो जो है गरीब अमीर हो गया, और जो 8 लाख कमाता है वो गरीब हो गया।
चुनाव में इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
बिल्कुल पड़ेगा, भाजपा ही के खिलाफ खुलेगा।
इस रैली को बहुजन यूथ फॉर मिशन 2019 और सत्य शोधक संघ ने साथ मिलकर आयोजित किया था। कहीं पर बसपा प्रमुख मायावती की तस्वीरें नहीं थी, लेकिन मंच से मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखने की इच्छा कई वक्ताओं ने जताई। मुख्य आयोजकों में पहला नाम बसपा के पूर्व उपाध्यक्ष जयप्रकाश का था, जिन्होंने पिछले साल राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया था और उसके बाद बसपा प्रमुख ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। इस रैली को बसपा में उनकी वापसी की कोशिशों के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहरहाल यहां आए लोग सपा बसपा गठबंधन को लेकर खासे उत्साहित दिखे। कानपुर से आए अनिल कुमार कनौजिया ने कहा,
2014 में ऐसा हुआ था कि सोचा था कि मोदी आए हैं तो कुछ करेंगे समाज के लिए, लेकिन समाज का इन्होंने भरोसा तोड़ दिया। अब वो समाज समझ चुका है कि ये झूठे सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं।
इस रैली के राजनीतिक मकसद के सवाल पर आयोजकों में से एक और सत्य शोधक संघ से जुड़े संजीव माथुर ने कहा,
जो बहुजन मिशन वाले हैं, उनका तो घोषित तौर पे ऐलान किया हुआ है कि वो बहन जी को सपोर्ट करते हैं। हमारे इस लाइन से सहमति नहीं है, ये हमारे मतभेद हैं, पर इसके बावजूद हम मिलके काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि हम किसी राजनीतिक दल को फ़ायदा नुकसान की दृष्टि से काम नहीं करते, ना हमारा वो दृष्टिकोण है। अब सामाजिक प्रक्रिया होगी तो उसका कुछ ना कुछ राजनीतिक नेतृत्व तो निकलेंगे, और उससे कौन लाभ लेता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हाँ, हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है कि इस प्रक्रिया से अगर बहुजन समाज के राजनीतिक दल बसपा को उत्तर प्रदेश में फायदा हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।
जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों की संख्या करीब 20% है, जिनमें से अधिकतर बसपा के पक्ष में माने जाते हैं। लेकिन चुनावी गणितज्ञ ये बताते हैं कि 2014 के चुनाव में दलितों का एक हिस्सा टूटकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा के पक्ष में चला गया था। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या दलित वोटर पूरी तरह भाजपा से संबंध तोड़कर अपने पारंपरिक ठिकाने की ओर लौट रहे हैं या नहीं। कुलदीप मिश्र, बीबीसी दिल्ली।
बीते शुक्रवार को द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म इसी नाम की किताब पर आधारित है, जो 2004 से 2008 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने लिखी थी। इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद युवा कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई थी और प्रदर्शन भी किए थे। इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका अभिनेता अनुपम खेर ने निभाई है। हमारी सहयोगी मधुपाल ने इस फिल्म और इसके विभिन्न पहलुओं पर अनुपम खेर से बात की।
नहीं, इस फिल्म में हमने बहुत मेहनत की है, सारे पूरे यूनिट ने, डायरेक्टर ने, राइटर्स ने, प्रोड्यूसर ने, हर डिपार्टमेंट ने, कैमरा डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, एक अच्छा अटेम्प्ट है हिंदी सिनेमा के लिए कि हम एक ऐसी रियलिस्टिक फिल्म बना रहे हैं जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर क्या होता है उसका हम उसका आभास ऑडियंस को कराएंगे। एंड फिर रिसर्च इसमें बहुत किया है, मैंने खुद 8-9 महीने इस रोल पे काम किया है।
जिस तरह का काम हम देख रहे हैं आपका इस फिल्म के जरिए, तो ऐसा लगता है कि बहुत रिसर्च तो है ही, लेकिन एक आपका एफर्ट भी बहुत है। यही चीज हमें, अगर हम हॉलीवुड की बात करें, कुछ ऐसा ही नजर आता है। लेकिन एक चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं इस काम के साथ साथ लोग इसको भी ऐसे कंपेयर करें कि ये तो बीजेपी सपोर्टर और ये सब चीजें।
मुझे उस बात से कोई परेशानी नहीं होती, बिकॉज मेरे अंदर का कलाकार जो है वो इस बात से सेटिस्फाइड है कि जिन प्रशंसकों ने इसकी तारीफ की है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी हर चीज में कहीं ना कहीं राजनीति जुड़ जाए, वो तो हमारा देश का प्रचलन ऐसा है कि हम राजनीति को बहुत सीरियसली लेते हैं, राजनेताओं को कभी कभी बहुत सीरियसली लेते हैं। अच्छी चीज की बुराई ही होती है, बुरी चीज की बुराई नहीं होती है।
लेकिन हमने हमेशा आपको देखा है कि आप हर चीज के लिए तैयार रहते हैं, हर सवाल के लिए तयार रहते हैं, तो क्रिटिसिज्म को आप कैसे देखते हैं निजी जिंदगी में भी?
क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा, इम्पोर्टेंट है। क्रिटिसिज्म कौन कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आप दुनिया के हर क्रिटिसिज्म करने वाले को इतना सीरियस नहीं ले सकते। गिने चुने लोग होते हैं अपनी जिंदगी में जो आप जानते हैं ये आपसे सच बात करेंगे। इनको आपकी भलाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए, घर वाले बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी तो सबको खुश करना तो किसी की भी बस की बात नहीं है।
अगर मैं गलत नहीं, तो पहले आपने इस किरदार के लिए मना कर दिया था, इसकी कोई खास वजह थी?
नहीं, मुझे लगता था कि कॉन्ट्रोवर्शियल किताब पर आधारित है और मुश्किल होगा, फिर पता नहीं कितना सीरियस हैं प्रोड्यूसर्स वगैरह, तो बिल्कुल इमीडिएटली हाँ नहीं की थी। और काफ़ी देर तक, 1.5 महीने तक इसकी चर्चा चलती रही कि मैं करूं या ना करूं। फिर जैसा कि मैंने बाकी जगह प्लेटफॉर्म पे भी बताया कि मैंने टीवी पर उनको न्यूज़ में देखा और वो जिस तरह से चल रहे थे, जिस तरह से वो कुछ कंडक्ट कर रहे थे, तो मैंने ऐसी अंदर के कलाकार ने कहा कि एक बार देखता हूं करके होता है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये रोल ऑफर हुआ है या हुआ था। तो जब मैंने करने की कोशिश की तो मैं बुरी तरह से फेल हुआ उसमें, और फिर मेरे मुझे लगा कि इसको ट्राई करना चाहिए, बिकॉज ये मेरे करियर का सबसे एक चैलेंजिंग रोल होगा, जो कि था। हम सेफ प्ले करते हैं, बोथ एज पीपल, एज एक्टर्स एंड एज प्रोफेशनल्स, कि यार ये मेरे से हो जाएगा, तो हम कॉम्पिटेंट रहने की कोशिश करते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप कॉम्पिटेंट ही रहना चाहते हैं लाइफ में, तो ब्रिलियंट नहीं हो सकते हैं। ब्रिलियंट होने के लिए आपको कहीं ना कहीं फेल होने का खतरा होना ज़रूरी है। जो इंसान माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता है बहुत मुश्किल है, अब जो ये पहाड़ी पर चढ़ना चाहता है तो उसका सामर्थ्य उतना ही है, तो कोशिश तो एटलीस्ट बरकरार रहनी चाहिए, हो सकता जीत जाएं आप। तो इसमें मेहनत तो की है और लोगों को पसंद आई है, तो अब फिल्म भी शायद लोगों को पसंद आएगी।
आपकी जो किताब है कुछ भी हो सकता है, उसने कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी है, उनकी सोच बदल दी है, उन्हें प्रेरणा दी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किताब से पहले आपकी अपनी, क्योंकि आपकी खुद की एक जर्नी है लोगों के लिए प्रेरणादायक, आपकी जर्नी से पूछूं मैं तो क्या चीज़ है जिसको लेकर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपनी ज़िंदगी को और बड़ा करना है अभी, और अभी बाकी है संघर्ष, तो वो क्या संघर्ष है?
नहीं, संघर्ष तो चलते रहते हैं। संघर्ष मैं कभी भी अपनी मौजूदा ज़िंदगी से ये नहीं होता कि अब मैंने कर लिया। अब देखिए, ये संघर्ष था मेरा कि मैंने हिंदुस्तान में बहुत काम कर लिया, 515 फिल्में 34 सालों में, तो अब मैं अंग्रेज़ी में सोचता नहीं हूँ, मैं हिंदी में सोचता हूँ और हिंदी भाषी हूँ, हिंदी मीडियम स्कूल से आया हूँ। तो मुझे लगा कि मैं अपना काम कैसे मुश्किल बनाऊं, तो मैंने सोचा कि अंग्रेज़ी सीरीज़ में काम करता हूं। अंग्रेज़ी फिल्मों में काम मैंने किया है, लेकिन सीरीज़ में 24 घंटे आपको काम करते रहना पड़ता है, तो वो मैंने अपना आयाम स्थापित किया। जैसा कि मैंने कहा कि अपने जीवंत होने का एहसास करना है, तो आप ऐसे ऐसे काम हाथ में लो जिससे आपको लगे कि यार ये फेल हो सकता है, और मुझे फेलियर से डर नहीं लगता। तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ, आशावादी भी हूँ, और मुझे फेलियर से डर नहीं लगता। तो फिर मेरे लिए तो कोई ताकत मुझे दुनिया की किसी चीज़ से रोक ही नहीं सकती, मेरे लिए तो कुछ भी हो सकता है।
अब चुनिंदा कलाकारों में है जिन्होंने बैलेंस बनाया हुआ है, बहुत चुनिंदा ही बॉलीवुड में ऐसे बहुत चुनिंदा कलाकार ही हैं जो हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से करें, और आप उन्हीं में से एक हैं। लेकिन जब आप हॉलीवुड में काम करते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी इंस्पायर करती है और आपको लगता है कि ये चीज़, तो ये बदलाव तो बॉलीवुड में भी होना चाहिए?
हमारे हर डिपार्टमेंट में ज़रूरी नहीं प्रोफेशनल लोगों, अब थोड़ा चेंज हो गया है पिछले 7-8 साल में, लेकिन जब मैं हिंदुस्तान के बाहर काम करता हूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां पर मतलब जो उस कला में निपुण ना हो या उसने उसकी ट्रेनिंग ना की हो उस क्षेत्र से वो ना आता हो। और बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा उनका रिसर्च रहता है, बहुत ज़्यादा उनकी उनकी जो प्री प्रोडक्शन होता है उनका बहुत काम होता है, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और नए तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, नए ढर्रे पे नहीं चलते हैं। बट आई थिंक दैट चेंज हैज़ कम। हम बहुत छोटी उम्र के देश हैं, 70 साल हुए हमारी आयु को अभी, पर इतनी देर में हमने काफ़ी कुछ हासिल किया है, पिछले 7-8 साल से चेंज आया है
और कहीं ना कहीं बदलाव भी आया है फिल्मों की चॉइस को लेके, जहां हम देख रहे हैं कि एज ए हीरो आप फ्रंट पे आ रहे हैं और इतनी बड़े तरीके से लॉन्च हो रही है ये फिल्म, और इसके बाद अब कई सारे ऐसी फिल्में भी हैं जिसमें बिग स्टार्स रहते हैं लेकिन वो चल नहीं रही हैं, तो ये एक बदलाव ये भी है कि लोगों की सोच अब बदल गई है, अब एक टिपिकल नहीं रही है फिल्मों को लेकर।
मुझे लगता है कि ऑडियंस इसलिए भी बदली है बिकॉज काफ़ी चीज़ें बदली हैं हमारे आसपास की। मनोरंजन का साधन अभी सिर्फ सिनेमा नहीं है, आपका मोबाइल मनोरंजन का साधन है, मल्टीप्लेक्सेस हैं, मॉल्स हैं, दुकानें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वेब सीरीज हैं। तो ऑडियंस जो है वो सचेत हो गई है, अब उनको आप कुछ भी परोस के दे दें वो ऐसा ज़रूरी नहीं पसंद करेंगे। कहानी प्रधान जो है वो रियलिस्टिक कहानी प्रधान मनोरंजक कहानियाँ पसंद आती हैं। ऐसा नहीं कि बड़े स्टार्स की फिल्म चलेंगी नहीं, बिकॉज एक लार्जर देन लाइफ को देखने का हमेशा एक सेंस ऑफ एडवेंचर होता है, मगर पिछले साल ने ये बात जाहिर कर दी कि फिल्म मोर इम्पॉर्टेंट है स्टार्स से।
ऐसे तीन किरदार अगर मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के अलावा, सानिश के अलावा, और ऐसे तीन किरदार पूछूं जो आपको लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे करियर के लिए, वो और कौन से थे?
मैं मोस्टली इस बात का हमेशा बोलता हूं कि इसका जवाब मैं आपको 30 साल बाद दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास 30 साल और हैं काम करने के लिए, मगर अब मौजूदा हालात में जो देखा जाए तो मुझे लगता है मैंने गांधी को नहीं मारा बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज अल्जाइमर पेशेंट को एक रियलिस्टिकली पेश करना, और मैंने ज़्यादा उसको उस फिल्म को मैंने प्रोड्यूस भी किया था तो आई हैड टू डू इट इन अ डिफरेंट मैनर, उसको बहुत मुश्किल था। खोसला का घोंसला बहुत ही मुश्किल किरदार था मेरे लिए, बिकॉज वो एक टिपिकल मिडिल क्लास दिल्ली के इंसान की कहानी थी जो वैसी ही लगनी चाहिए थी। और मेरी सबसे बड़ी जो मुझे लगता है उपलब्धि है इस फिल्म की, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की। जब मैंने सारांश की थी तो मैं 28 साल का था और मैंने 65 साल के बुजुर्ग की अभिनय का अभिनय किया था, लेकिन मुझे कोई जानता नहीं था मैं कौन था, मैं कैसा था, तो जो भी मैंने किया लोगों को रियलिस्टिक लगा। लेकिन जब मैंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किया तो मेरे पीछे 515 फिल्में हैं और 35 साल हैं, लेकिन अगर उन सारे फिल्मों को इकट्ठा करके और उसके बावजूद भी अगर कोई अंश एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में नहीं नजर आता तो वो मतलब वो मेहनत का और मेरी ट्रेनिंग का नतीजा है।
सर, इस फिल्म का सबसे डिफिकल्ट सीन बता सकते हैं? कौन सा डिफिकल्ट सीन रहा?
सारे डिफिकल्ट थे।
आपकी पॉपुलैरिटी को देख के, क्योंकि आज आप सिर्फ एक सिर्फ भारत के लिए नहीं, मतलब पूरी कंट्री के लिए एक फेस हैं, तो जाना चाहेंगे कभी आप, अगर आपको ऑफर दिया जाए कि कभी कि आप अभिनेता के साथ साथ नेता का भी किरदार निभाएं, तो क्या कभी निभाएंगे आप? आपके विचारों से बहुत लोग सहमत होते हैं, आपके विचारों को मानते हैं।
मैं एज एन इंडिविजुअली अपनी वो विचारों को प्रकट करता रहूंगा, जैसा कि आपने कहा कि नेता का मंच मुझे लिए जरूरी नहीं है अगर अपने विचार मुझे लोगों तक पहुंचाने हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे मंच हैं, आजकल सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप दुनिया को बता सकते हैं ये मेरे विचार हैं। और जिस दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए तो मैं छुपके नहीं करूंगा, मैं वो भी डंके की चोट पे करूंगा।
उनके प्रोमो को देखने के बाद कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आपने कांग्रेस पे एक निशाना डाला हुआ है, सोनिया गांधी जी पे, राहुल गांधी जी पे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनको कहना चाहिए बस फिल्म देखनी चाहिए। और मैं फिल्म का एक भाग हूँ, अंग हूँ, अभिन्न अंग हूँ, मगर मैंने फिल्म ना बनाई है, ना मैंने प्रोड्यूस की है, ना मैंने डायरेक्ट की है, मैंने उसमें एज एन एक्टर काम किया है।
इस फिल्म के बाद कुछ और कुछ प्लान?
मैं इस फिल्म के बाद जो मेरी इंडिया में फिल्म है उसका दो फिल्में हैं, एक है ले ले मेरी जान जो कॉमेडी फिल्म है जो 2-3 साल से रुकी हुई थी, अब वो आगे बढ़ रही है, और दूसरी अशोक नंदा जी की फिल्म है वन डे, एक रिटायर्ड जज की कहानी है।
ये थे अभिनेता अनुपम खेर जिनसे बात कर रही थी मधुपाल। और अब खेल समाचार। खेल समाचारों की जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त जी। आदेश जी।
जी शाहिद भाई, सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कुछ खबर आज की और कुछ खबर कल की। अगर आज की बात की जाए तो पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोहानिसबर्ग में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां थोड़ी देर पहले पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में एक विकेट खोकर 74 रन बना लिए थे। शान मसूद नाबाद हैं 37 रन बनाकर, जबकि इमाम उल हक 35 रन बनाकर डेलिस्टेन की गेंद पर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच हुए। उनका साथ दे रहे हैं शान मसूद का अजहर अली जो 1 रन बनाकर नाबाद है, जबकि पाकिस्तान के सामने के लिए 381 रनों का लक्ष्य है। उधर संयुक्त अरब अमीरात में खेले जा रहे एएफसी एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत पर विशेष रूप से कल नजर रहेगी, क्योंकि भारत का सामना बहरीन से है। भारत ने पहले मुकाबले में थाईलैंड को 4-1 से हराया था, और इस जीत का इंपैक्ट देखिए कि थाईलैंड के कोच की छुट्टी हो गई, और लेकिन
बाद।
जी लेकिन अगले ही मुकाबले में भारत को संयुक्त अरब अमीरात ने 2-0 से हराया। भारत पर अब कल का मैच जीतने के लिए काफी दबाव होगा, क्योंकि अगर उसे नॉकआउट दौर में
आदेश जी अब धीरे धीरे इसमें टफ होता जाएगा मामला जिस तरीके का है।
जी हाँ बिल्कुल,
भारत के लिए एक लिहाज से बहुत बड़ी चैंपियनशिप है फुटबॉल की, क्योंकि भारत फुटबॉल में उतना भी नहीं है मजबूत
जहां तक इस एशियन कप की बात
जी,
है।
बिल्कुल।
और अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां पर तो भारतीय टीम जिस तरह से पहला मुकाबला हारी काफी चर्चा में है, लेकिन अब कल से ऑस्ट्रेलिया में साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत होने जा रही है, जहां कल पहले ही दिन पुरुष एकल वर्ग में पहले दौर में दूसरी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल और इसके अलावा स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर, वहीं महिला एकल वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल जर्मनी की एंजेलिक कर्बर पहले दौर में स्लोवेनिया की पोलेना हरकोंग का सामना करेगी। इसके अलावा कल ही तीसरी वरीयता हासिल रूस की सदाबहार खिलाड़ी मारिया शारापोवा ब्रिटेन की हैरियट डार्ट का, और पांचवी वरीयता हासिल अमेरिका की स्लोन स्टीफन्स अपनी ही हमवतन टाउनसेंड के खिलाफ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत करेगी। और कल ही 8वीं वरीयता हासिल चेक गणराज्य के पेत्रा क्वितोवा पर भी सबकी नजर रहेगी, जिन्होंने कल ही सिडनी इंटरनेशनल ओपन का खिताब जीता और सिडनी इंटरनेशनल को ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले अभ्यास के तौर पर देखा जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद खेल समाचारों के लिए आदेश कुमार गुप्त जी। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर आदर्श राठौर से। बीबीसी समाचार। कांग्रेस ने आज लखनऊ में कहा कि वो उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शनिवार को हुए शक्तिशाली धमाके में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। ये गैस लीक होने से ये धमाका हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से अपील की है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ पूर्व पुलिसकर्मी को फांसी न दे। खिजार हयात को 2003 में एक सहकर्मी की हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने खाड़ी में अपने अमरीकी सहयोगी देशों से अपील की है कि वो अपने कूटनीतिक विवादों को सुलझा लें। पोम्पियो ने कहा कि सऊदी अरब और यूएई से कतर का चल रहा विवाद कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया है। ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने चेताया है कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से निकालने में नाकाम रहना लोकतंत्र में अक्षम्य अपराध होगा। संसद में होने वाले अहम मतदान से 2 दिन पहले मे ने कहा कि सांसदों को यूरोपीय संघ से निकलने के समझौते को खारिज करके लोगों को निराश नहीं करना चाहिए। बीबीसी।
एजेंसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आपके साथ है हमारी वेबसाइट bbchindi.com। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।